نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير Amazed by Al-Asmaul Husna آج ہم اس سیریز میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک اور خوبصورت نام الہادی دیکھیں گے نام سنتے ہی ایک دم محبت بھی آ جاتی ہے اور جو ہمارے تصور میں ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور بنتا ہے تو مجھے تو ایک انگلی یاد آتی ہے کہ بچے کی انگلی پکڑ کر جب ماں باپ اس کو قدم قدم پہ چلنا سکھاتے ہیں اور اسی طرح سے اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تم اپنی زندگی میں ہماری مدد کے بغیر ابھی نہیں چل سکتے بعد میں چلو گے وقت کے ساتھ ساتھ بچہ تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کو بالکل بھی ضرورت نہیں رہتی ماں باپ کی انگلی پکڑنے کی بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا بڑے ہوتے ہوئے بچے اگر آپ ان کی انگلی پکڑیں یا ان کو کہیں پکڑائیں تو وہ مائنڈ کرتے ہیں ایسے ہی ہے نا یعنی ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہماری آزادی کے راستے میں رکاوٹ ہے اور اکثر بچے یہ کہتے ہیں جب میں چھوٹا ہوتا تھا گویا کہ اب میں بہت بڑا ہو گیا ہوں تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان آزاد ہو جاتا ہے پھر اس کو رستے آنے لگ جاتے ہیں پھر اس کو آہستہ آہستہ سائیکل چلانی آ جاتی ہے پھر گاڑی چلانی آ جاتی ہے اور اس طرح سے ایک وقت آتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں اور فطرت کا بھی اصول ہے چڑیا بھی اپنے بچے کو اڑنا اگر سکھاتی ہے تو پھر ایک دن وہ بچے گھونسلہ چھوڑ جاتے ہیں نا اگر چڑیا کو یہ پتا ہو کہ میں اس کو اڑنا سکھا رہی ہوں اور یہ اس گھونسلے کو چھوڑ جائیں گے تو شاید کبھی نہ اس کو کرے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر جو بھی اس کے حساب سے بات ڈالی ہوئی ہے تو اس کے حساب سے آپ دیکھیے تو بالکل ایسے ہی ہے ہر ایک چل رہا ہے کائنات میں چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو جاندار ہو کہ بے جان ہو عاقل ہو یا غیر عاقل ہو اس کو اس دنیا میں بھیجے جانے کے بعد کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا کیسے کرنا یعنی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور کیسے کرنا ہے یہ سب چیزیں سکھانے کے لیے الہادی نے ہدایت نامہ دے دیا بہت سارے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے اسی لیے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھٹکتے ہیں تو الہادی کون ہے کہ جو آپ کو جینے سے لے کے مرنے تک اور اسی طرح چھوٹے سے لے کے بڑے کاموں تک سکھاتا ہے اور جتنا زیادہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر نظریں لگاتے ہیں آپ کو اس چیز کا یقین آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سکھائے بغیر ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے ایون آپ دیکھیے کہ سورج چاند ستارے پہاڑ پھل پھول اور ان سب سے بڑھ کے انسان کا اپنا وجود دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے بچہ ماں کا محتاج ہوتا ہے ماں تو نہیں سکھاتی کہ دودھ کیسے پینا اسی طرح باپ تو نہیں سکھاتا نا کہ پیٹ میں درد ہو تو پھر ایسی آوازیں نکالنی ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی الہادی ہونے کا حق ادا کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ دنیا میں جانے کے بعد تم نے اسی رب کو پکارنا ہے جو تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی دیتا تھا جو تمہیں حقیقت میں اس وقت بھی دیتا تھا جب تم یا اللہ نہیں کہہ سکتے تھے تمہیں یا رب بھی کہنا نہیں آتا تھا اور جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر نظریں لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو مایوس نہیں کرتا تو جینے کے لیے جو ہمیں ہدایتیں چاہیے ہوتی ہیں اس میں سے عام طور پہ آپ دیکھیے ایک عام ہدایت ہوتی ہے جو مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھانا پرندے کو اڑنا اور انسان کے بچے کو رونا سکھانا کیونکہ روتے ہوئے ہی آتے ہیں اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی بندہ رو ہی رہا ہوتا ہے تو بندے کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے کسی اور کو کتنی ہے کیا ہے یہ سب کچھ الہادی سکھاتا ہے تو لفظ الہادی ہدن سے ہے ہا دال یا اس کا روٹ ہے نرمی کے ساتھ بھلائی کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا یعنی ہدن ہدایت گائیڈنس ہدیہ تحفہ تو ہادی تحفے دینے والا ہدایت کے یعنی الہادی کو جب آپ سمجھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں تحفے دینے والا اور تحفوں میں سے سب سے بڑا تحفہ ہدایت کا تحفہ دینے والا اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ دیتا کوئی بھی رستہ تو دل کیسے دھڑکتا صرف انسان کے جسم میں دیکھیے کیا کیا مشینیں لگی ہوئی ہیں اور صرف یہ نہیں کہ کھانا ہے پھر کیا کھانا ہے پھر اس کو ہضم کیسے کرنا ہے پھر تھوڑا سا کھا کر جگالی کیسے کرنی ہے پھر پانی پینا ہے پھر آپ دیکھیے جسم کے ایک ایک حصے کے اندر آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح سے گائیڈ کیا ہے. آپ کو مجھے اگر اپنے دل کو گائیڈ لائن دینی پڑتی تو بیٹھے ہوتے آج ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کا اور کام, کانوں کا اور کام, زبان, دل, باڈی آرگنس ہی آپ دیکھیے تو ہنڈرڈز ہیں. ہر ایک کا نہ صرف یہ کہ کام, انرجی کہاں سے لینی ہے, کیسے چلنا ہے. آپ صرف ریسپریٹری سسٹم جا کے پڑھیے ذرا, آپ حیران ہو جائیں کیسے باہر سے آکسیجن لینی اور اندر سے کاربن باہر نکالنی. پھر اس میں لنگز ہیں, پھر آپ کے جسم کے اندر ایک ٹریک بنا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیے نیورو سسٹم, اللہ اکبر کبیرہ, دماغ سے لے کے جسم کے ایک ایک بال, ایک ایک پور, اور آپ کے جسم کی ایک ایک جوائنٹ کو اس نروس سسٹم کے تھرو اللہ نے باندھ دیا. کون کرنے والا یہ؟ کیا یہ سارے کام ماں باپ سکھاتے ہیں؟ اللہ کی شان, اللہ کی ذات. اور پھر اتنی غیر محسوس طریقے سے یہ کام ہو رہے ہیں, اتنے غیر محسوس طریقے سے, تو نرمی اور بھلائی کے ساتھ راستے کی طرف راہنمائی کرنا, اس کو ہدایت کہتے ہیں. اور یہ کام جو کر دے اس کو الہادی کہتے ہیں. اور آپ اس کے اوپر جتنی نظریں لگائیں گے نا, آپ حیران سے حیران تر ہوتے جائیں گے, پکی بات ہے. پھر آپ کو یقین آتا ہے کہ واقعی اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی علم دیا ہے نا, وہ بہت تھوڑا دیا ہے. ہم تھوڑے سے علم کے ساتھ بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں, اور ذرا سا جب علم زیادہ آتا ہے, اور جب خاص طور پہ اس رنگ میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی معرفت کو جان لینا, تو پھر تو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے سب سے کم ہی آتا ہے. تو آپ اور میں اپنی زندگی میں اپنے جسم, اپنے کان, اپنی ہاتھ, ان کو نہیں بتا سکے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, تو باقی کام ہم کہاں بتائیں گے اس کو. اس لیے ضرورت ہے کہ انسان کبھی کبھی ان چیزوں پہ غور کرے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ الہادی وہ ہے جس نے کسی اور پہ ہمیں ڈالا ہی نہیں ہے کہ چلو کچھ میں کچھ تم. دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا, اچھا یہ آپ کام کر لیں یہ میں کر لوں. نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے. پھر آپ اپنے جسم سے اوپر ہٹیں تو سورج مشرق سے نکلنا ہے کہ مغرب سے, کدھر غروب ہونا, کب اوپر جانا, کب نیچے جانا. پورے دن میں آپ دیکھیں 24 گھنٹے میں سورج کی موومنٹس دیکھ لیجئے, الہادی بتاتا ہے سورج کو. چاند, اور چاند کے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مناس الہا حتا دکل ارجون القدیم, کیسے دبلا پتلا ہوتا ہے, پھر ایک دم گول ہوتا ہے, پھر ہاف ہو جاتا ہے سیمی سرکل. یہ سب چاند کی منزلیں طے کرنے والے کو بھی الہادی کہتے ہیں. دریاؤں کو بہنا کون سکھاتا ہے؟ پہاڑوں کو کھڑا رہنا کون سکھاتا ہے؟ الہادی سکھاتا ہے. اور جس نے اللہ تعالیٰ پر اپنی نظریں لگا لی نا, اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ جس طرح دنیا میں آتے ہوئے میں اس کے آگے محتاج تھا نا, دنیا سے جاتے تک محتاج ہوں. بچے کو تو کچھ عرصے کے بعد انڈیپینڈنٹ ہوتا, آپ خود دیکھتے ہیں نا, لیکن آپ اور میں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی خود کو الگ نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں, اگر اصطلاحی معنی دیکھیں تو ہدایت کی توفیق بخشنے والا, ہدایت دینے والا, نجات اور اپنی راہ اور اپنی معرفت کی راہ بتانے والا, تمام مخلوقات کو اپنی حاجات اور ضروریات پوری کرنے کی راہ دکھانے والا. پھر آپ دیکھیے, پیٹ میں لقمہ گیا نا تو منہ میں گیا, اس لقمے کے سارے جسم سے گزر کر جسم سے نکلنے تک کے راستے بتانے والا الہادی ہے. کون سکھاتا ہمارے جسم کو؟ یہ دل دن میں کتنی دفعہ دھڑکتا ہے, ایک منٹ میں کتنی دفعہ جانا ہے, یہ آپ کا ہارٹ بیٹ ریٹ کیا ہونا چاہیے, الہادی بتاتا ہے. کون سا بلڈ پریشر نارمل ہے, کون سا کم ہے, الہادی کا سیٹل ہے. جیسے آپ اپنے گھروں میں ٹیمپریچر سیٹ کرتے ہیں نا, گرمی ہے, سردی ہے, اچھا ذرا کم ہیٹ کھول دیں, زیادہ کھول دیں. الہادی نے پوری دنیا کا ایک ایک کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اور پھر اکارڈنگ ٹو نیڈ, کیسے پتا چلتا ہے کہ پیٹ بھر گیا؟ کھاتے ہی رہتے, کھاتے ہی رہتے. یہ سٹمک کے اندر سے کوئی آواز آتی ہے, یہ کون بتاتا ہے کہ بس بس اب اور لقمہ نہیں ڈالنا؟ الہادی بتاتا ہے. ایک منٹ میں کتنی دفعہ پلکیں چھپکنی ہے؟ الہادی بتاتا ہے. آپ کس حد تک چل سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ مزید چلیں گے تو آپ گر جائیں گے, یہ احساس باڈی میں کس نے ڈالا؟ الہادی نے ڈالا. الہادی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والے کبھی بھی بے نیاز نہیں رہ سکتے. وہ خود کہتا ہے, وکفا بھی ربی کا ہادیم و نصیرا, میں کافی ہوں ہادی, راہ دکھانے والا اور مددگار بھی. یہ تو صرف فرقان کی آیت 31 ہے. फिर इसी तरह से आप देखें सूरह हज की आयत 54 में अल्लाह खुद अपना तारुफ कराता है, वइन्नल्लाहा लहादिल्लज़ीना आमनू इला सिरातिल मुस्तकीम, और बेशक अल्लाह ताला ईमान वालों को सिरात मुस्तकीम के रास्ते दिखाता है। तो एक हो गई हिदायत आमा, ये अमूमी जिस पर भी बात की, फिर दूसरी हिदायत खासा जो मुत्तकियों के लिए जो जन्नत तक ले जाती है। तो अल्लाह सुबहाना ताला किस तरीके से आपके मेरे लिए ये रास्ते आसान करते हैं हमें इसका एहसास तक नहीं होता। फिर इस तरह याद रखिए कि दर्जा बदर्जा, आहिस्ता आहिस्ता, बसहूलत, बगैर सख्ती बरते, गैर मखसूस तरीके से दुरुस्त रास्ते की तरफ चलाने और रहनुमाई करने को दलाला कहते हैं। यानी हिदायत जो है ना सिर्फ दलालत है, दलील का लफ्ज़ उर्दू में सुना ही होगा ना, यानी अल्लाह खुद ब खुद हमें उन रास्तों पे ले जाता है जिसमें हमारे लिए कोई खैर रखी होती है। आप देखिए कि हिजरत का सफर याद कीजिए अल्लाह के नबी का, अगर आपने वाकया पढ़ा हो तो एक अराबी जो था वो रास्ते में मिल गया, सभी तो ढूंढने निकले हुए थे, अबू बकर सिद्दीक भी साथ थे। तब क्या हुआ कि एक अराबी हजरत अबू बकर सिद्दीक से वाकिफ था मगर वो नबी सल्लम को नहीं जानता था, तो उसने पूछा अबू बकर से कि आपके साथ कौन है? तो आपने कहा हाजा हादी यहदीनी, ये मेरे हादी हैं जो मुझे रास्ता दिखाते हैं रास्ते की तरफ। यानी जुमानी जुमला बोल दिया, अरबी को ये समझ आया कि ये शायद इस जंगल में ये सहरा से गुजरने का रास्ता जानता है, क्योंकि उस दौर में ऐसे लोग एक्सपर्ट्स के तौर पे मौजूद थे। और दूसरा वो मानी था जो अबू बकर सिर्फ जानते थे, वो तो चला गया, अगर उसको पता चल जाता ये वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिनकी कीमत लगी हुई और 100 ऊंटों की कह लीजिए कीमत देकर भी कोई अगर इनको पकड़वा दे तो इसके बारे में भी उन्होंने इसी चीज को रखा हुआ है, तो कभी भी वो ना छोड़ता ना। तो फिर क्या पता चला, हाद हादी, रास्ते दिखाने वाला। फिर इसी तरह से आप अगर इसको असलाफ के सलफ सालेहीन के अकवाल की रोशनी में देखते हैं तो आपको इसके बहुत ही खूबसूरत मानी मिलेंगे। तो अल हादी का लफ्ज, इसके मानी को आपने देखा। आप सलफ सालेहीन के अकवाल अगर देख लीजिए तो इमाम जुज्जाज कहते हैं कि अल हादी जल्ला जलालहू वो जात है जो अपने बंदों को अपनी रबूबियत और अपनी मार्फत की जानिब रहनुमाई फरमाता है, और वही अपने बंदों को सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमाता है। जैसा कि अल हादी जल्ला जलालहू का इरशाद है कि जिसको चाहता है राह रास दिखाता है। ये है अल हादी। क्या पता चला कि अल्लाह ताला की हस्ती किस तरह बंदों को थाम लेती है, कदम कदम पे गिरने से थामता है अल्लाह ताला बंदे को। और फिर पीछे आप देखिए ना कि आपने अल्लाह ताला के नाम पढ़े अन्नाफे अद्दौर, तो जितना ज्यादा आप अल्लाह ताला के बारे में ये सारी चीजें जानते हैं ना उतना आपको इस चीज का यकीन आ जाता है कि उसके सिवा कोई रास्ते दिखाने वाला नहीं है। फिर इसी तरह से इमाम जुजाजी कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अल हादी हैं, वो अपने बंदों को अपने तक पहुंचने का रास्ता बतलाते हैं और भलाई और इनामाल का रास्ता बताते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से करीब करने वाले हैं। तो क्या पता चला कि अल्लाह ताला के इस नाम को समझने के लिए हमें खास तौर पे अल्लाह से ही दुआ करनी है कि मालिक तू हमें अपने रास्तों पे चला, और दुआ किया करें कि अल्लाह ये जो हम रोज दुआ करते हैं इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम, आप उस दुआ को भी सामने रख लें। ये जब आप कहते हैं ना इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम तो इसमें हमेशा जन्नत नहीं मुराद होती, इसमें यह भी होता है कि आज के दिन क्या करूं, इस हफ्ते में क्या करूं, इस महीने में क्या करूं, इस साल में क्या करूं, अगले 5 साल में क्या करूं, आज क्या पकाऊं, आज किधर जाऊं, आज क्या पहनूं, बाहर सर्दी है कि गर्मी, तुझे पता बारिश होगी नहीं, जूते कौन से पहनो। छोटी से लेके बड़ी हिदायत तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में, और आप इस जात से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। उसके सारे इंतजाम बड़े खूबसूरत हैं। आप कह सकते हैं कि हादी की जरूरत हर वक्त है, हर वक्त है और हर किसी को है। कुछ चीजें होती हैं कभी हुई कभी ना हुई, लेकिन हर लम्हे हर वक्त जिस जिस चीज की जिस खूबी की अल्लाह की बंदों को जरूरत है वो अल हादी है। एक लम्हे के लिए नेविगेटर से आप अपने आप इधर उधर करें तो क्या होगा, आप भटक जाएंगे और हो सकता है फिर आगे रास्ता भी ना मिले, फिर कहीं मुड़ के वापस आएंगे तो होगा। और सूरत अल फुरकान में ये एक ही दफा है पूरे कुरान में, आयत 31, वकफा बि रब्बी का हादियम व नसीरा, और आपका रब हिदायत करने और मदद फरमाने के लिए काफी है। हाँ, अलहदी हिदायत के मतलब अगर हम देखें तो कुरानी आयतें बहुत सारी हैं। अगर हम अल्लाह ताला के हादी होने को आम हिदायत जो कि शुरू में आपको बता दिया उससे समझें, तो इसकी तो सबसे मारूफ आयत सूरत तौहा 50 आयत है। आयत नंबर 50 सूरत तौहा, रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शयइन खल्क़हु सुम्मा हदा। हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज को खलकत बख्शी फिर रहनुमाई फरमा दी। इसमें आता है वो सब कुछ, मछली के बच्चे को तैरना और परिंदे को उड़ना और इंसान के बच्चे को रोना, और इसी तरह से पेट में दर्द भी है तो रो रहा है, भूख भी लगी तो रो रहा है, खुश भी है तो पता नहीं रोता ही है, रोते ही रोते आते हैं दुनिया से बच्चे और फिर उसके बाद चले जाते हैं। तो ये सब अलहादी के कारनामे हैं। फिर इसके बाद अलहादी हिदायत के तलबगारों को मजीद हिदायत देने वाली हस्ती को कहते हैं। हाँ, हिदायत के तलबगार, जो लोग हमारे साथ दौरे कुरान कर रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस साल का टॉपिक हिदायत का तलबगार दिल, यानी दिल की भी वो कैफियत जिसमें हिदायत की तलब है, वरना दिल को समझ के भी क्या कर लेना था हमने। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज इस चीज की गवाही आपको भी मिलती है, मेरे तक भी कुछ चीजें पहुंच जाती हैं कि वाकई कुरान पढ़ने के बाद हिदायत की तलब और बढ़ जाती है। तो किसको हिदायत देगा? जो मजीद हिदायत मांगेगा हिदायत के तलबगार को। मसलन सूरत मोहम्मद आयत नंबर 17, वल्लज़ीन अहतदौ ज़ादहुम हुदा। जो लोग हिदायत याफ्ता हैं अल्लाह ने इन्हें हिदायत में और बढ़ा दिया। आमतौर पे नहीं समझ आती ये बात जब तक कुरान ना खुले कि ये क्या बात है जो हिदायत में, अब उनको और हिदायत चाहिए या और दे रहा है। जाहिर है वक्त के साथ आपकी भूख बढ़ती है, बच्चा दूध पीता है, थोड़ा बड़ा होगा उसको सॉलिड्स चाहिए, फिर और बड़ा होगा तो उसको चिबा के खाने वाली चीजें चाहिए। तो वक्त के साथ हमारा हर मामला बढ़ता जाता है ना, हिदायत भी ऐसी है। और लिख लें, जैसे भूख और नींद जितनी चाहे बढ़ा लें और जितनी चाहे कम कर दें, हिदायत की भी तलब जितनी चाहे बढ़ा लें जितनी कम कर दें। हिदायत की भूख बढ़ा लेंगे तो और हिदायत की भूख लगेगी, हिदायत की भूख कम करेंगे तो फिर तो एक लुकमा नहीं हिदायत का लिया जाएगा। आपने देखा कुछ लोग डाइटिंग के नाम पे सब कुछ छोड़ देते हैं और अजीबोगरीब सी चीज बन जाते हैं, फिर वो मरियल और उठे नहीं बैठे नहीं, हर वक्त सोए सोए ढीले ढाले। अब कभी उनको खिला भी देना कोई जबरदस्ती तो वॉमिट हो जाएगी या डायरिया हो जाएगा। इसी तरह लिखिए, हिदायत जब एक अरसे तक ना ली जाए तो कभी मिल भी जाए ना तो दिल ही नहीं लगता, बोझल। हाय 3 घंटे, अस्तगफिरुल्लाह भाई, 24 घंटे में से 3 घंटे हैं, क्या हो गया तुम्हें, कर क्या रहे हो, मसरूफियत क्या है तुम्हें, बेसब्रपन। और इसी तरह से आप देखिए फिल्म देखिए 3 घंटे तो कोई भी नहीं फर्क, एक के बाद लोगों को चेन के साथ एक से दूसरी फिल्म देखते भी सुना गया, तो क्या पता चला, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी। फिर सूरत मरियम आयत 76, व यजीदुल्लाहुल्लज़ीना अहतदौ हुदन। और हिदायत याफ्ता लोगों को अल्लाह ताला हिदायत में और बढ़ा देता है। तो आज दुआ करते, जैसे आप कहते हैं ना रब्बी जिदनी इल्मा, तो अब कहा करें रब्बी जिदनी हिदायतन, रब्बी जिदनी अमलन। हिदायत मांगिए, अमल मांगिए, अल्लाह की मोहब्बत मांगिए, रसूल की मोहब्बत मांगिए, आप फील करेंगे कि दिन ब दिन रास्ते खुलते जा रहे हैं। जब आप खाना शुरू करते हैं, एक बीमारी से उठते हैं ना तो भूख नहीं लगती, लेकिन जब खाना शुरू कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता फिर भूख भी लगने लग जाती है। और अलहादी कौन है जो इंसानों की हिदायत के लिए रसूलों को भेजने वाला? सूरह सजदा की आयत 24 खोल के देख लीजिए, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बि अमरिना। और हमने इनमें से कुछ लोगों को इमाम बनाया जो हमारे अमर से लोगों को हिदायत करते थे, यानी लोगों की हिदायत का सामान जमा करते थे। तो आइमाए कराम यानी कुछ लोगों को अल्लाह लीडरशिप के दर्जे पे ले आता है, इसलिए कि लोगों को अल्लाह की हिदायत से वो जोड़ सके। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब आप अल्लाह ताला की इस हकीकत को जान लेते हैं ना, तो आपको इसका भी यकीन हो जाता है कि अल्लाह ने ये जो मुसहफ, ये कुरान पाक जो नाजिल किया है ना, ये भी असल में हिदायत नामा ही है। लोगों की हिदायत के लिए कुरान मजीद नाजिल करने वाले को अल-हादी कहते हैं। और इसकी दलील सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 9 है, इन हाजल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक्वमु। बेशक ये कुरान वो राह दिखाता है जो सबसे सीधी है। और हम इसको सबसे आखिर में पूछते हैं, छोड़ो छोड़ो कहीं पता नहीं, कई लोग इस्तखारा करते हुए डरते हैं, कहते नहीं पता नहीं क्या निकल आएगा, उनको लगता है कि बस इस्तखारा कर लिया तो शायद अब अपनी मर्जियां नहीं हम कर सकेंगे। हालांकि आप देखिए कि आपको अल्लाह सुबहान तआला ने रास्ता दिखा दिया, कोई काम करना है, कोई फैसला करना है, सहारा कीजिए। और इसी तरह और बहुत सारी चीजें हैं, फिर बाद में हम धोखे खाते हैं, बाद में हम परेशान होते हैं, हम कहते हैं पता नहीं ऐसे ही क्यों हुआ, किसी की नजर लग गई, ये हो गया, वो हो गया। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल हादी के लफ्ज को हदीस की रोशनी में देखेंगे तो मुस्नद अहमद की रिवायत है 10158, अबू जर गफ्फारी से रिवायत है रजी अल्लाह अन्हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो तुम सब गुमराह हो मगर वो जिसे मैं हिदायत दूं, बस तुम मुझसे हिदायत मांगो मैं ही तुम्हें हिदायत दे दूंगा। ऐ मेरे बंदो तुम सब भूखे हो सिवाय इसके जिसे मैं खाना खिलाऊं, लिहाजा मुझसे खाना तलब करो मैं तुम सबको खाना खिलाऊंगा। ऐ मेरे बंदो तुम सब नंगे हो सिवाय इसके जिसे मैं कपड़ा पहनाऊं, लिहाजा तुम मुझसे कपड़े मांगो मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊंगा। ऐ मेरे बंदो तुम रात दिन गुनाह करते हो, बस तुम मुझसे गुनाहों की मगफरत तलब करो मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि बख्शिश मांगना भी सिखाता है अल्हादी, गुनाह होते हैं गुनाहों से कैसे अब बाहर निकलना ये भी अल्हादी सिखाता है। जैसे आप देखिए कि बिल्कुल ऐसे ही तसव्वुर आ रहा है, अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल नहीं लेकिन सिर्फ हमारी अपनी समझ है, अल्लाह ताला उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। हत्ता कि आप देखिए कि जिस्म में रूह जिब्राइल के थ्रू डाली जाती है ना, अल्लाह सिखाते हैं। तो मलकुल मौत को भी अल्लाह ने सिखाया कि रूह खींचनी कैसे है, फिर कफन दफन कैसे करना है मरने वाले का किसने सिखाया, अल्लाह ने सिखाया। कब्र खोद कर मुर्दे को कैसे दफनाना है, अल्लाह ने सिखाया। तो जो लोग अल हादी से अलग अलग रहते हैं वो सीधे रास्ते पे कैसे होंगे, और खास तौर पे जब ये अल हादी आ जाता है ना हादी की बजाय, तो सीधा रास्ता दिखाने और फिर उस पर चलाने वाला। और इसके ऊपर जितना गौर करेंगे आपको यकीन आता जाएगा कि अल्लाह ताला के सिवा और कोई अल हादी हो ही नहीं सकता। फिर इसी तरह रिवायत है सही बुखारी में 3884, जब अबू तालिब की वफात का वक्त आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ ले गए, इस वक्त वहां अबू जहल भी बैठा हुआ था। आपने फरमाया कि चचा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह एक मर्तबा कह दो, अल्लाह की बारगाह में आपकी बख्शिश के लिए एक यही दलील मेरे हाथ आ जाएगी। कितनी हिरस थी ना नबी को लोगों को राह दिखाने की, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं आप नहीं दिखा सकते, इन्नका ला तहदी मन अहबबता। तो खैर इस पर अबू जाहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया ने कहा कि अबू तालिब के अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाओगे, ये दोनों इन ही पर जोर देते रहे और आखिरी कलमा जो इनकी जुबान से निकला वो ये था कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर कायम हूं। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं इनके लिए इस वक्त तक मगफरत तलब करता रहूंगा जब तक मुझे इसे मना न कर दिया जाए। यानी आपने उस वक्त भी हिम्मत नहीं हारी, कहा मना तो नहीं किया ना, हिदायत ना दे अल्लाह या ना इनको इस्लाम मिले, लेकिन कम अज कम मैं तो इनको पुकारता रहूंगा। यह है बखा की कैफियत जिसको आज हमने बड़ी डिटेल से देखा है कल्बे सलीम के टॉपिक में, कि ये चीज ना हो तो इंसान कभी किसी का फायदा नहीं कर सकता। तो क्या पता चला कि हिदायत के लिए अल्लाह ने कुछ कवानीन रखे हैं, अल्लाह का कानून हिदायत दिन ब दिन समझ आता जाएगा ना आपको, तो आप सीधे हो जाता है इंसान, आप कहते हैं नहीं मैं क्यों कर रही हूं, खामखा कहते हैं अल्लाह ने देनी होगी तो हिदायत दे देगा, ये होगा तो वो होगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह का कानून हिदायत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, समझ जाए तो बंदा कांप जाता है बल्कि सीधा हो जाता है, मुझे तो यही लगता है। फिर आप देखिए कि अबू तालिब के साथ जो मामला हुआ तो सूरत तौबा में आयत नाजिल हो गई, मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनु अन यस्तग़फिरु लिल्मुशरिकीन वलौ काना उली क़ुरबा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। नबी के लिए और मुसलमानों के लिए मुनासिब नहीं है कि मुशरिकीन के लिए दुआए मगफरत करें, खा वो इनके नाते वाले यानी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जबकि इनके सामने ये बात वाजे हो गई कि वो दोस्ती हैं। और सूरत कसस में यह आयत नाजिल हुई कि इन नकला तहदी मन अहबबता, बेशक जिसे आप चाहें हिदायत नहीं कर सकते। क्या पता चला, बुला सकते हैं आप और मैं हिदायत की तरफ, थमा नहीं सकते। हजरत नूह के जुबानी सूरत हूद में अल्लाह ने कहा अनुल्ज़िमुकुमुहा, क्या मैं जबरदस्ती हिदायत तुम्हें ठप दूं, तुम्हें आके चिपका दूं, जब तुम नहीं लेना चाहते तो फिर अल्लाह क्यों तुम्हें दे। फिर आप देखिए कि अल हादी से जब आप लफ्ज देखते हैं ना तो तो एक तो जनरल फॉर्म थी, लेकिन जो आला दर्जा है ना हिदायत का, वो क्या है कि किसी शख्स को मंजिल मकसूद की तरफ मेहरबानी के साथ रहनुमाई करना और हिदायत करना। और हकीकी मानों में ये सिर्फ अलहादी का ही फेल हो सकता है। फिर आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को तलब हिदायत के लिए नहायत उम्दा और नफीस दुआ सिखाई, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, इसकी हिदायत फरमा। और इसकी तलकीन को बंदों पर लाजिम करार दिया कि जब भी नमाज के लिए खड़े हों तो ये दुआ पढ़नी जरूरी है। और इस दुआ के मातहत तमाम इंसान, चाहे वो मोमिनीन हैं, औलिया अल्लाह हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, वो सब भी ये दुआ मांगते रहे, क्योंकि हिदायत के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। रास्ता नहीं मालूम तो रास्ता दिखा, ये तो बिल्कुल इब्तदाई दर्जे का शख्स होगा। और जिसको पता है उसको कहा जा रहा है कि तुम इससे आगे चलो, आगे चलाओ। यानी हिदायत का आखिरी दर्जा यह कि जब जन्नत सामने होगी और आप कह देंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह, सारी तारीफ़ उस अल्लाह के लिए हैं जिसने यहाँ आने का रास्ता बताया, और अगर अल्लाह रास्ता ना बताता तो हम यहाँ नहीं पहुँच सकते थे। और ये जो सिरात मुस्तकीम है ना, एक दिन सिरात के बाद, तो ये क्या है? सिरात मुस्तकीम से मुराद दीन का वो रास्ता है जिसमें अफरात और तफरीत ना हो, नो एग्जेजुरेशन नो गलूफ। अफरात के मानी हद से आगे बढ़ना और तफरीत के मानी कमी करना, काटना, कोताही करना। तो सिरात मुस्तकीम का पता सूरत फातिहा की आयत में दिया गया, कौन होते हैं सिरात मुस्तकीम पे? सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया। याद रखिए कि ये वो खत मुस्तकीम है जिसका एक सिरा दुनिया और दूसरा सिरा जन्नत है। अगर आप यहां से जन्नत तक एक सीधी लाइन खींच देना तो ये है सिरात मुस्तकीम। जब तक वहां पहुंच नहीं जाते चैन नहीं आएगा। जैसे फ्लाइट चली हुई है ना, उतर जाए, घर में आ जाए, फिर मानते हैं कि अच्छा शुक्र है सब हो गया, कम अज कम फ्लाइट तो उतर जाए, बीच में उतरते हुए भी कुछ हो सकता है, जान पे बनी रहती है ना। तो आपकी मेरी जान पे बनी रहनी चाहिए जब तक हम जन्नत में ना पहुंच जाए। और इन दोनों के दरमियान जो मिलाने वाली लकीर है वही सिरात मुस्तकीम है, और ये क्रिस क्रॉस है। जन्नत और जहन्नम का रास्ता आपस में कई जगह टकराता है, और हर जंक्शन जहां पे दोनों ओवरलैप होते हैं, ये खतरा भी है और उम्मीद भी है। नेकियों पे चलने वाले को खतरा है कि कहीं दूसरे रास्ते पे ना चला जाए, और गुनाह पे रखने वाले के लिए ये जंक्शन एक तौबा की अपॉर्चुनिटी है। और यही सिरात जन्नत में दाखिले से पहले वो पुल सरात बन जाएगी जिससे हर एक को गुजरना होगा। अल्लाह कुरान में कहते हैं सूरत मरियम में, वाइम मिन को मिल्ला वारिदुहा, तुम्हें से हर एक को इसके ऊपर से गुजरना है। तो आज दुनिया में अगर आप और मैं इसके ऊपर चलेंगे और अमल करेंगे तो वहां भी अल्लाह रास्ते दिखा देगा। फिर आप देखिए कि हिदायत के मुख्तलिफ दर्जात होते हैं ना। मसलन पहला दर्जा क्या है? आम हिदायत। कायनात और मखलूकात की तमाम इकसाम, जमादात, नबातात, हैवानात, सब के लिए कॉमन है, जैसे हमने ऊपर देख लिया सूरह ताहा में आयत 50 में। इसी को आप हिदायत आमा कहते हैं, और इसी के तहत सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, फल फूल सब लग रहे हैं, यानी जानदार या बेजानदार। इसके लिए मुसलमान होना तो दूर की बात है, इंसान होना भी शर्त नहीं है। और इसी हिदायत आमा का नतीजा है कि कायनात आलम में सभी अपना मुकर्रा फर्ज नहायत सलीके से अदा कर रहे हैं। जैसे निजाम शमसी का अजीमत शान निजाम देख रहे हैं, गैलेक्सीज कैसे सितारे घूमते हैं, आप देखिए जमीन घूम रही, सूरज घूम रहा, सितारे घूम रहे, हर एक एंगल, और हजारों साल से हो रहा है। वंस अ वाइल हो गया खत्म। वो कहते ना कि हर रोज होता है तमाशा मेरे इर्द गिर्द, कैसे अल्लाह सुब्हानहु तआला ने पानी को बहना सिखाया, दरख्त को ऊपर चलना सिखाया, बादलों को तैरना सिखाया। कौन बनाता बादल अगर हमें कहा जाता बनाओ? फिर आप देखिए फोर सीजन, कैसे सीजन पलटता है, छोटी से बड़ी हर तरह की हिदायत उसने हमें देकर मुकल्लफ बना दिया। फूल का खिलना, पहले कली का बनना और फिर उसके बाद आगे से आगे जाना, कोई इंसान ये काम कर ही नहीं सकता था। ये कायनात कैसी सेट सिस्टम पे चल रही है, और एक दो नहीं हजारों दिनों से। फिर आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तमाम हैवानी मखलूकात को इनके फायदे की चीजों की हिदायत बख्शी है, इन्हें सिखाया कि कैसे अपना रिस्क तलाश करें, नुकसानदेह और मुखलक चीजों से कैसे बचें। मतलब देखिए समुद्री जानवर है, परिंदे हैं, कौन बताता है? हमें तो ये तक नहीं पता कि उनका मकसद क्या है, कीड़े मकोड़े क्यों हैं? अल्हादी को पता। चींटियां क्यों? अल्हादी को पता। कहते हैं कि एक दफा कनाडा में कैंपेन चली थी कि मच्छर खत्म कर दो ताकि मलेरिया ना हो, तो जब मच्छर खत्म किए तो और बीमारियां शुरू हो गईं कि उनको फिर पालने पड़े मच्छर, के ना भी मच्छरों को रहने दो, ये तो कोई और बीमारी को खत्म करते हैं। तो वो हर मखलूक को अपनी जरूरी हाजतों के पूरा करने की समझ देता है। बच्चे को पैदा होते ही माँ से दूध लेना सिखाता है, चूजे को उसके अंडे से निकलते ही दाना चुगना सिखाता है। कभी देखा हो कैसे पैदा होते ही बच्चे को भूख लग जाती है। फिर इसी तरह से आप देखते हैं कि शहद की मक्खी को 6 खानों वाले घर में रहना तो दूर की बात, बनाना कौन सिखाता है? और वो घर जो इसके जिस्म की साख्त के लिहाज से सबसे मुनासिब है, स्टोरेज के लिए दी बेस्ट फॉर्म होती है हेक्सागोनल। इसी पे शब्बीर अहमद उस्मानी साहब कहते हैं कि हर चीज को इसकी इस्तेदाद के मुवाफिक शक्लो सूरत ख्वास वगैरह इनायत फरमाए और कमाले हिकमत से जैसे बनाना चाहिए था वैसा बनाया। मखलूकात में से हर चीज के वजूद और बका के लिए जिस साजो सामान की जरूरत थी वो मुहैया किया। मौलाना रूमी की बात सुनिए, बहुत ही खूबसूरत है। कहते हैं कि जुबान से निकली हुई आवाज के मानी का इदराक ना कान कर सकता है ना आंख कर सकती है, हालांकि ये जुबान से करीब है। इस इदराक का फरीजा अल्लाह ताला ने कानों के सपुर्द किया है, वही जुबान की बात को लेते हैं और इदराक करते हैं, और इसी तरह कानों से देखने या सूंघने का काम नहीं लिया जाता, नाक से देखने या सुनने का काम नहीं लिया जाता। क्या पता चल रहा है? दूर वाले को पहले पता चल गया, करीब वाले को नहीं पता चला। अल्लाह सुबहान तआला कैसे आप देखिए कि इन सारी चीजों के ऊपर हमें सोचना सिखाते हैं। फिर इसी तरह से हिदायत का दूसरा दर्जा क्या है? ये उस पहले वाली हिदायत से खास है। ये जी अकल, जविल अकूल कहते हैं, जो सोच सकते हैं जैसे इंसान है और जिन्न है, इनके लिए। और ये हिदायत अंबिया और आसमानी किताबों के जरिए हर इंसान को पहुंची, और इसका मुकल्लफ है इंसान और जिन। इंसानों और जिन्नों के लिए अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें रख दी, मतलब जिनमें हयात के साथ अकल और शऊर के आसार भी नुमाया नजर आते हैं, वो इंसान और जिन्न है। इसीलिए या माशर अल जिन्नी वल इंस का लफ्ज आता है। आपको इसको कबूल करके मोमिन बने, मुस्लिम बन जाए, या इसका रद्द करके काफिर और मुशरिक ठहर जाए, ये उसका दर्जा। ठीक है, तो ये दूसरा दर्जा हुआ हिदायत का। तीसरा दर्जा हिदायत का क्या है? उससे भी ऊपर, खासुल खास, जो सिर्फ मोमिनीन और मुत्तकीन के लिए मखसूस है। ये हिदायत भी अल्लाह ताला की तरफ से बिला वास्ता इंसान पर फाइज होती है, और इस हिदायत का नाम है तौफीक। तौफीक जी, अल्लाह हमें ये भी दे दे। बहुत सारों को ये नहीं मिलती, मिल भी जाए तो लेते नहीं है। यानी ऐसे असबाब और हालात पैदा कर देना कि कुरानी हिदायत का कबूल करना, इन पर अमल करना आसान हो जाए और इनकी खिलाफ वर्जी दुश्वार हो जाए। क्या पता चला कि आपके मेरे लिए ये सारी चीजें कितनी ज्यादा मोटिवेशन की है। फिर आप देखिए, अगर हिदायत देता है ना, तो फिर वो हिदायत के वसाइल भी देता है, जिसको वसाइल हिदायत कहेंगे। कैसे? दो तरह से, एक कौनी कायनाती और एक अंबिया की बेसत। पहला वसीला क्या है? ये वसी उल अरीज अजीम शान कायनात, सूरज चांद सितारे, इसी पे अल्लाह बार बार गौर करना सिखाते हैं कुरान में, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वाख्तिलाफि लैलि वन नहार। फिर इस तरह बेसत अंबिया, ये है दूसरी हिदायत के लिए, कुछ इंसानों को चुना जो अंबिया किराम कहलाए। फिर तीसरी चीज किताब, किताबें उतरी हर दौर में, हर नबी को कोई किताब या सहीफा दिया या उसने पिछले नबी की किताब को फॉलो किया। और फिर चौथी चीज है दाई अल्लाह, अंबिया के बाद इनके सच्चे पैरोकार अल्लाह सुबहान तआला की तरफ बुलाते रहते हैं, और यही लोग अंबिया के वारिस कहलाते हैं। अल्लाह हमें इनमें शामिल कर ले। जब अल हादी ने हिदायत देने की बात रखी अपने ऊपर, तो क्या सबको हिदायत मिलती है? तो जवाब है कि नहीं मिलती। तो लिखिए, किन लोगों पर हिदायत के रास्ते बंद हो जाते हैं? बड़ी आसान बात है वैसे समझे, और ना समझे तो किसी को समझ ही नहीं आती। वो कहते हैं अल्लाह ने गुमराह किया नौजवेला। भाई आप मुंह ही नहीं खोल रहे तो आपके मुंह में लुकमा कौन डाले? देखिए ना, लुकमा बना के कोई रखा है, पकाना खरीदना जमा करना तो दूर की बात है, लुकमा बना के कोई आपके पास रखता है कि अब खा लो, तो मुंह ही ना खोले तो हिदायत कहां से मिलेगी? तो फिर कह दीजिए किन को हिदायत नहीं मिलती। नंबर एक, वो दिल जिन पर मोहर लगा दी जाती है, खत्म अल्लाह वला कुलूबिहिम। फिर ख्वाहिश नफ्स को माबूद बनाने वाले, अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु। फिर मुर्तद, जो जान बूझ के दीन को रद्द कर दे, डिनायल फेस में चला जाए। फिर इस तरह मुस्तहज़िऊन, अल्लाह और उसके रसूल का इस्तेहज़ा करने वाले यानी मजाक उड़ाने वाले, और मलऊन, जिस पे लानत पहुंच जाए, ऐसे लोग हिदायत से महरूम होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि महरूमुल हिदाया कौन लोग हैं? जालिम, काफिर, फासिक, खाइन, काजिब और इसराफ करने वाले। अल्लाह हमें इनमें से किसी एक पे भी ना करे। फिर आप देखिए कि अल हादी राह मुस्तकीम की हिदायत देने वाले को कहते हैं ना, तो इसी तरह अल हादी ही बंदों की सही और सच्ची रहनुमाई कर सकता है। सब इसकी रहनुमाई के मुख्ताज है और इसी की हिदायत और रहनुमाई पर सबको चलना है। बड़े बड़े मुकर्रबीन भी इकरार करते हैं कि अल्लाह तआला की हिदायत और उसके हाथ थामे के बगैर हम एक कदम नहीं उठा सकते। अंबिया की रहनुमाई भी इसीलिए बंदों के हक में काबिल कबूल है कि अल्लाह तआला बिला वास्ता इनकी रहनुमाई फरमाता है। अब ये तो हो गई हिदायत से कुछ मुतलक चीजें, तो कुछ चीजें जो साइंस से मुतलक है, तो इंसान को साइंसी तालीम भी अलहादी की तरफ से एक अतिये के तौर पर मिली है। मतलब देखिए कि साइंस किसी चीज को पैदा नहीं करती, बल्कि कुदरत की पैदा करदा चीजों का इस्तेमाल सिखाती है। तो इस्तेमाल का इतना दर्जा तो अलहादी ने फितरतन इंसान को सिखा दिया। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये अकल फहम रखी कि पहाड़ों को खोद कर, दरियाओं में गोते लगाकर सैकड़ों मादनियात निकाले, दरियाई चीजें, सी फोर्ट, फिर गूंगे निकाले, फिर लकड़ी, लोहे, तांबे, पीतल को जोड़कर इनसे नई चीजें बनाकर इंसान अपनी जरूरतें पूरी करता है। ये अल्लाह ने सिखाए, ये फितरी साइंस है। थोड़ा आगे बढ़ते जाएं तो फनी और इल्मी तहकीकात के जरिए इसमें तरक्की की ताकत भी है। अलहदी का सिखाया हुआ तोहफा है। आज जितने गैजेट्स हैं, जितनी बिजली की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और कंप्यूटराइज चीजें, ये किसने सिखाया सब कुछ? आज से 10 साल पहले इतना तो कंप्यूटर नहीं यूज होता था और फोन का इतना ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं था ना। तो ये अलहादी से मुतल्लिक बातें हैं। अलहादी से मुतल्लिक अज़कार और दुआएं, सबसे ज्यादा मांगी जाने वाली और सबसे खूबसूरत दुआ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सूरत अल फातिहा की आयात में से। फिर इब्ने माजा की रिवायत है 3832, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वलफाफा वलगिना। अल्लाह मैं तुझसे हिदायत, परहेजगारी, पाक दामनी और दिल की मालदारी चाहती हूँ या चाहता हूँ। अल्लाह हमें अता फरमा दे। और बहुत सी दुआएं हिदायत पे। तो फिर तहज्जुद शुरू करने की दुआ, अल्लाहुम्मग़फिरली वहदिनी वरज़ुकनी वाफिनी, अबू दाऊद की रिवायत है 766। अल्लाह मेरी मगफरत फरमा, मुझे हिदायत दे, मुझे रिज्क अता फरमा और मुझे आफियत से रख। फिर बेदार होने की दुआ अबू दाऊद में है 5061, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका अल्लाहुम्मा अस्तगफिरुका लिज़म्बी वसलुका रहमतका अल्लाहुम्मा ज़िदनी इल्मा वला तुज़िग क़ल्बी बादा इस हदैतनी वहब ली मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। नहीं तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद, पाक और बरतर है तेरी जात। ए परवरदिगार, मैं तुझसे अपने गुनाह की माफी चाहता हूँ, तेरी रहमत का ख्वासगार हूँ। अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा और हिदायत मिल जाने के बाद मेरे दिल को कजी से महफूज रख, मुझे अपनी रहमत से नवाज, बेशक तो बड़ा नवाजने वाला है। फिर इस तरह एक बहुत ही प्यारी दुआ है, जरा कम मांगते हैं हम लोग लेकिन है बहुत खूबसूरत, जामे तिरमिजी में है 3551, रब्बी आइन्नी वला तुइन अलैया वंसुरनी वला तंसुर अलैया वमकुरली वला तमकुर अलैया वहदिनी वयस्सिरिल हुदा ली वन सोरनी अलामम बगा अलैया रब्बी जाल नी लक शक्कार लक जक्कार लक रहाबन लक मितवान लक मुखबितन इलैका अव्वाह मुनीबा रब्बी तकब्बल तौबती वग्सिल हौबती वाजिब दावती वसब्बित हुज्जती वसद्दित लिसानी वहदी कल्बी वसलुल सखीमत सदरी। ऐ मेरे रब, मेरी मदद कर, मेरे खिलाफ किसी की मदद ना कर। ए अल्लाह, तू मेरी ताईद और नुसरत फरमा और मेरे खिलाफ किसी की ताईद और नुसरत ना फरमा, और मेरे लिए तदबीर फरमा और मेरे खिलाफ किसी के लिए तदबीर ना फरमा, اور اللہ تو مجھے ہدایت بخش اور ہدایت کو میرے لیے آسان فرما، اور اللہ میری مدد فرما اس شخص کے مقابلے میں جو میرے خلاف بغاوت اور سرکشی کرے. اے میرے رب، تو مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار بندہ بنا لے، اپنا بہت زیادہ یاد اور ذکر کرنے والا بنا لے، اپنے سے بہت ڈرنے والا بنا دے، اپنی بہت زیادہ اطاعت کرنے والا بنا دے، اور اپنے سامنے عاجزی اور فروتنی یعنی جھکنے والا بنا دے، فروتنی کرنے والا بنا دے، اور اپنے سے میرے درد اور اندوخ بیان کرنے یعنی میں اپنے دکھ سکھ تجھے ہی سناؤں اور اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے. اے میرے رب، میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہ دھو دے اور میری دعا قبول کر لے اور میری حجت یعنی دلیل کو ثابت اور ٹھوس بنا دے اور میری زبان کو ٹھیک بات کہنے علی بنا دے، میرے دل کو ہدایت فرما اور میرے سینے سے کھوٹ کینہ یا حسد نکال دے. بتائیے ذرا، ہم کبھی خود اتنی خوبصورت دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ تو مستون دعائیں مانگا کریں، اس میں بہت برکت ہے. پھر آپ دیکھیے ایک اور دعا جو ہم ہر روز وتر میں مانگتے ہیں، تو وتر میں مانگی بھی دعائیں ہدایت. حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے وتر میں یہ دعا مانگنی سکھائی تھی کہ یہ پڑھا کرو. اور یہ ابو داؤد 1425، ابن ماجہ 1178، ترمذی 464 ہے. اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فی ما آتیت، وقنی شر ما قضیت، انک تقضی ولا یقضی علیک، وانہ لا یذل من والیت، تبارک ربنا وتعالیت. کتنا پیارا اس کا آپ دیکھتے ہیں ترجمہ، کہ اللہ مجھے ہدایت دے اس میں سے جو تو ہدایت دیتا ہے، اور عافیت دے اس میں سے جو تو عافیت دیتا ہے، اور تو میری تولیت کر یعنی تو میرا دوست بن جا جیسے کہ تو ولی بنتا ہے، اور جو تو نے مجھے عطا کیا اس میں برکت دے، اور بچا لے مجھے اس شر سے جو تو نے فیصلہ کر لیا، کیونکہ تو ہی فیصلہ کرتا ہے، تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اور بے شک اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا جسے تو دوستی دے، اور بے شک بابرکت ہے تیرا نام اور بلندیوں والا. کیا پتہ چلا، اگر آپ شعور کے ساتھ دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا ڈیلی، تو اب تک تو الحمدللہ آپ کا دل بہت ہی زیادہ اس چیز کے اوپر ٹھک چکا ہوگا کہ ہدایت مانگنے کی خوبصورت دعا ہے یہ. اور پھر الہادی سے متعلق المعزۃ الحسنہ کیا ہے، اس اسم سے تعلق قائم کیجئے. آپ کا میرا الہادی سے تعلق جڑ گیا نا، تو ہر اس چیز کو چھوڑ دیجئے جو ہدایت کے راستے کی رکاوٹ ہے. مثلا دین کی بات کا دھیان سے نہ سننا، عالم حفاظ اور دینداروں کی غیبت کرنا یا اپنے دل میں ان کے متعلق میل رکھنا، اپنے اساتذہ کا ادب نہ کرنا، دینداروں پر اعتراض کرنا، پھر اسی طرح اپنی آنکھ کان عقل اور ہوش کو احکام الہی پر لگا دے. ہدایت ایسے ہی لوگوں کی رفیق راہ بن کر انہیں منزل تک پہنچاتی ہے، یعنی یہ آپ کا ایک بہت پیارا گائیڈ ہوتی ہے. پھر سر الحادی کی دیوی ہدایت سے ہم پورے عالم کی رہنمائی کا ذریعہ بنے. ارادہ تو کیجئے، نیت تو کیجئے، کام اللہ کروا لے گا آپ سے. اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، اور زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ہر وقت ہر لمحہ الحادی سے رہنمائی طلب کریں. پھر ہدایت طلب کرنے کی جو تمام قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، انہیں پورے شعور سے مانگیں، اور ہدایت کی دعا مانگتے ہوئے اپنی قلبی کیفیات پہ غور کیجئے، اور جب ہدایت پا لیں اس پہ چل پڑے تو پھر اس دعا کو کبھی نہ چھوڑیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کیونکہ گائیڈنس از اے گفٹ. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کو ہدایت دینے کے بعد، اور اپنے پاس سے خاص رحمت دے، تو بے شک دینے والا ہے. تو کیا سیکھا آپ نے اس نام سے؟ ابھی تو ہم نے اس کو صرف ایک قسم کا سمجھا ہے، اور بہت کچھ ہے ڈیٹیلز میں اس میں، لیکن آپ کو مجھے کیا چاہیے، تڑپ کر ہدایت کی دعا مانگے. تو یہ تھا آج کا نام الہادی. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك.